अब हम देखेंगे कि सुन्नत कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में क्या अहमियत रखती है। तो तीसरा बाब है अस-सुन्नतु फी दौइल कुरान, सुन्नत कुरान मजीद की रोशनी में। दीन के मामले में रसूलुल्लाह के हुक्म की इताअत करना फ़र्ज़ है। इसकी दलील सूरत अनफाल की आयत 20, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्माउन। ए लोगो, जो ईमान लाए हो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और बात सुन लेने के बाद इससे मुंह न मोड़ो। इससे पता चला कि अल्लाह के नबी की बात सुनने के बाद मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अमली तौर पे क्या हो रहा है, हर एक अपने आप को चेक करता जाए। दूसरी दलील सूरत नूर आयत 56, व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रसूल की इताअत करो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा। इससे पता चला कि रसूल की इताअत करने से इंसान पर अल्लाह की तरफ से रहमतें उतरती हैं। अगली दलील सूरत निसा आयत 80, मन युति रसूल फ़कद अतो अल्लाह व मन तवल्ला फ़मा अरसलना का अलैहिम हफीज़ा। जिसने रसूल की इताअत की उसने दरअसल अल्लाह तला की इताअत की, और जिसने रसूल की इताअत से मुंह फेरा इसका वबाल उसी पर होगा, हमने आपको इन पर पासबान बनाकर नहीं भेजा। कितनी बड़ी गवाही है, अल्लाह की बात और रसूल की बात एक ही है। उसकी ये दलील बन गई कि रसूल जो भी कहते हैं, जो करते हैं, वो अल्लाह के हुक्म से होता है। अगली आयत सूरत निसा आयत 64, वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। हमने जो भी रसूल भेजा है वो इसलिए कि उस अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। इसके बरक्स आज के दौर में अमूमन रसूलों के साथ क्या ताल्लुक़ है, उनकी नातें पढ़ने का, उनके हुसन के तस्करे करने का और उनकी जुल्फ़ों की बातें करने का, उनकी गुफ्तगू के जिक्र। मैं एक जगह थी और वहाँ बकायदा ऐलान हुआ माइक पे कि अब इसके बाद हम 20 मिनट होंगे जिसमें हम नातें पढ़ेंगे, जिसमें अल्लाह के नबी की जुल्फ़ों का जिक्र होगा, जुल्फ़े बालों को कहते हैं, फिर आपके होंठों का जिक्र होगा, फिर आपके गालों का जिक्र होगा। यानी बकायदा मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे सुना कि लोग खुद इस चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं कि अल्लाह के नबी के हुसन के तस्करे किए जाएं, और जहां बात का जिक्र आता है तो कई सुन्नतें हम तोड़ देते हैं। तो हकीकत क्या है कि रसूल क्यों आते हैं, इस आयत को आप हाईलाइट करेंगे। इस आयत ने ये वाजह कर दिया कि रसूलों के दुनिया में आने का एक ही मकसद है, क्योंकि बात वमा से शुरू हो रही है, नहीं से शुरू हो रही है, और नहीं हमने भेजा कोई रसूल, मीन दिस इज़ द ओनली रीज़न टू सेंड अ प्रॉफिट। जैसे ला के साथ बात शुरू होती है ना, इसी तरह मां से शुरू हो रही है। क्या रीज़न है, ओनली वन रीज़न, क्या, इल्ला लियुता, उसकी इताअत की जाए। इससे पता चला कि रसूल के साथ हर मामला कर लिया जाए, तारीफ़ें की जाए, उनकी नज़नातें पढ़ी जाएं, उन पर दरूद भेजा जाए, उनसे मोहब्बत की जाए, लेकिन अगर रसूल की इताअत ना की जाए तो बात नहीं बनती। और यहाँ वो जुमला बोलूँगी कि जो आपको सीरत की किताब में भी गालिबन बोला था कि अल्लाह के नबी की ज़ात से ज़्यादा आपकी बात से मोहब्बत करनी है। क्यों? कि अल्लाह के नबी की ज़ात से मोहब्बत तो अबू तालिब ने भी की थी। सारी ज़िंदगी जब तक दुनिया से गए नहीं, आपका तहफ़्फ़ुज़ करते रहे, आपके लिए कुर्बानियाँ देते रहे, लेकिन मोहब्बत किस चीज़ से नहीं की, बात से मोहब्बत नहीं की। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं माना, नतीजा क्या है, हम सुन चुके। अबू लहब ने अल्लाह के नबी की ज़ात से मोहब्बत की थी, तभी तो जिस दिन अल्लाह के नबी की पैदाइश की खुशखबरी दी गई तो खुशी से सुवैबा नाम की लौंडी को आज़ाद कर दिया कि तू मेरे फौतशुदा भाई अब्दुल्ला के घर में बेटे की पैदाइश की खबर लाई है, मैं इतना खुश हूँ कि तुझे आज़ाद करता हूँ। उस दिन तो खुशियाँ मनाई, लेकिन जिस दिन उसी भतीजे ने कहा कि कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो अल्लाह को एक मानो, तुफलहून, फलाह पाओगे, तो कहने लगे मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए, नऊज़ुबिल्लाह। क्यों? कि 12 रबीउल अव्वल को जब पैदाइश की खबर आई तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पैदा हुए थे, और जब इकरा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी के ज़रिए तौहीद का पैगाम आया तो उस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश थी। तो बात क्या है, असल चीज़ यह है कि आप किसी की बात कितनी मानते हैं। आज उम्मत अगर अपने हालात को देखे तो अल्लाह के नबी की सुन्नतों के साथ कितना गहरा ताल्लुक है उसको हम बड़े आराम से देख सकते हैं। सूरह आले इमरान की आयत 132 में आता है, वातीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अगली दलील सूरह निसा की आयत 59 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ये कौन है? ये मैं और आप हैं। इन आयतों को सुनते वक्त अपने आप को खुशकिस्मत महसूस किया करें कि अल्लाह ताला हमें आसमानों से पुकार दे के ईमान की निस्बत से पुकारता है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और इन लोगों की जो तुम में से साहिबे अमर हो। अगर कभी तुम्हारे दरमियान किसी मामले में इख्तलाफ हो जाए तो इसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटा दो। अगर तुम वाकई अल्लाह और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हो, यही सही तरीका है और सवाब के लिहाज से भी अच्छा है। अल्लाह की तरफ लौटाने का क्या मतलब है कि कुरान मजीद की तरफ रुजू करना, और रसूल की तरफ लौटाने का क्या मतलब है कि आपकी हयात तय्यबा में आपकी ज़ात मुक़दस जो थी उसके तरफ देखना, और आपके जाने के बाद अब आपकी बातों को आपकी सुन्नतों की रोशनी में देखना। इस आयत में हमारे लिए अमल की बात क्या है कि कभी ज़िंदगी में किसी मसले में कोई इख्तलाफ हो जाए, वो दीनी मसले पे हो, वो दुनियावी पे हो, वो नमाज़ पढ़ने पे हो, वो नमाज में हाथ उठाने पे हो या हाथ नीचे करने पे हो, वो सजदा करने पे हो या सजदा नीचा करने पे हो, वो हलाल और हराम के मामले में हो, तो मेयार क्या है? अल्लाह की बात और उसके रसूल की बात। जिसकी दलील मिल जाए बस फिर तुम अपने हाथ नीचे गिरा दो क्योंकि तुम्हारे पास दलील मिल गई। अगर कोई अल्लाह के रसूल की बात को सुन के भी अपनी अमल को नहीं बदलता तो ये बहुत बड़ा तकब्बुर होगा कि हमारे लिए हमारी बात या किसी और आम इंसान की बात अल्लाह के नबी की बात से बड़ी बात है। एक और दलील है सूरत निसा आयत 65, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम, लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी इख्तलाफात में आपको फैसला करने वाला न मान ले। फिर जो फैसला भी तुम करो इस पर अपने दिलों में कोई तंगी महसूस न करें बल्कि सर बसरे तस्लीम कर लें। मुराद क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ना सिर्फ ये कि मानना है बल्कि उन सुन्नतों को मानना है खुशी से। बाज़ लोग सुन्नत अदा तो कर लेते हैं लेकिन बोझल दिल से, क्या मुश्किल, अब पढ़ना पड़ेगा, अब करनी पड़ेगी ये बात, अब सुन्नत है। नहीं, फिर भी बात नहीं बनी जब तक सुन्नत को अपने दिल की खुशी न बना लो। सूरत मोहम्मद की आयत 33, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और इताअत से मुंह न फेरो और इताअत से मुंह मोड़ कर अपने आमाल को ज़ाया न करो। और सूरत हशर की आयत 7, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। जो कुछ रसूल तुम्हें दे दें वो ले लो, और जिस चीज़ से रसूल तुमको रोकें उससे रुक जाओ, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। अगली बात, रसूल अकरम की इताअत और इत्तेबा कामयाबी की जमानत है। दलील सूरत नूर आयत 52, वमन युति अल्लाह व रसूलहू, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, अल्लाह से डरें और उसकी नाफरमानी से बचें वही कामयाब हैं। कामयाबी आज किसको कहते हैं? दुनिया में कामयाब होना। हालांकि अल्लाह की निगाहों में कामयाबी क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, अल्लाह के नबी की इताअत और इत्तबा। इस आयत में इताअत और इत्तबा का लफ्ज़ आया है, दोनों को अगर जमा कर लें फ़र्क क्या है? आप अमूमन ये लफ्ज़ सुनते हैं कि अल्लाह के नबी की इताअत करो और एक लफ्ज़ होता है इत्तबा करो। दोनों का फ़र्क देखते हैं, बड़ा खूबसूरत तकाबुल है दोनों का। इताअत का लफ्ज़ तौअन से है, तोए वाओ आइन, कुरान पाक में ये लफ्ज़ आया तवम व करहन, खुशी से करो या नाखुशी से करो। तो इतात कहते हैं अल्लाह के नबी किसी काम के करने का हुक्म दें तो उसको खुशी से करना, रोते धोते नहीं, बोझल दिल से नहीं, खुशी से करना। जबकि इत्तेबा का लफ्ज़ जो है ताबा आइन से है, तबा इत्तेबा, तबिया, मुत्तबे सुन्नत, ये लफ्ज़ उर्दू में भी हम सुनते हैं। इत्तेबा क्या होती है कि किसी के हुक्म का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि उसको वो काम करते देखकर वो काम करने लग जाना। अल्लाह अकबर। इताअत क्या था कि हुक्म मिल गया फिर किया आपने, खुशी से करी। लेकिन इत्तेबा क्या है कि हुक्म नहीं भी मिला, बस आपको कोई काम करते देखा तो खुद ही करने लगे। और सहाबा कराम इसकी बेहतरीन मिसाल थे। इसी किताब में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि सहाबा कराम कितना इस चीज़ का एहतमाम करते थे कि अल्लाह के नबी कोई काम करते तो ये खुद ही करते। आसान सी मिसाल ले लें, किबले की तब्दीली। नमाज के दौरान किबला तब्दील हुआ था, अल्लाह के नबी ने चेहरा बदला तो उन्होंने भी बदल लिए। नमाज के बाद आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुम करो, तो लिहाजा आपकी इताअत भी करनी है और इत्तेबा भी करनी है, यानी फुट स्टेप को फॉलो करना, आपके नक्शे कदम पर चलना, ये चीज़ें इत्तेबा में आएंगी। सूरत नूर की आयत 51 में आता है इन्नमा काना कौलल मोमिनीन, ईमान लाने वालों का काम तो ये है कि जब वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि रसूल इनके मामलात का फैसला करे तो वो कह दें हमने बात सुन ली और इताअत इख्तियार की, ऐसे लोग ही कामयाब होने वाले हैं। और जो बात ही नहीं सुनते वो मानेंगे कहाँ से, जिनका इल्म से कोई ताल्लुक ही नहीं, जो इन बातों को सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना एक फारिग वक्त का मशगला समझते हैं, या जो सोचते हैं कि चंद लोग काफ़ी हैं इस काम को करने कराने वाले, वो सुनेंगे नहीं तो मानेंगे कहाँ से। इसलिए मानने से पहले बात को सुनना लाजिम है, और अल्लाह ताला हमें सुनने वालों में कर दे। सूरत अहज़ाब की आयत 71 वमै युति अल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की इसने बड़ी कामयाबी हासिल की। सूरत निसा आयत 13 वमै युति अल्लाह व रसूलहू युदख़िलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल्अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे अल्लाह उसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा रहेगा, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अगला मसला है अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक किए गए आमाल का भरपूर सवाब मिलेगा। हर बंदा कोई भी काम करे तो उसका दिल चाहता है ना कि उसको अजर मिले। हम में से कोई ऐसा है कि नमाज पढ़े और ये ना चाहे कि इसका अजर मिले, रात को जागे और कहे इसका अजर मिले ना मिले मुझे कोई परवाह नहीं, रोज़ा रखे और कहे कोई बात नहीं अजर मिले ना मिले, ऐसा कोई भी नहीं है ना। तो क्या चीज़ है कि जिसके बाद इंसान अमल करे तो उसको पूरा अजर मिलता है, वो है अल्लाह के नबी के हुक्मों के मुताबिक काम करना। दलील है सूरत हुजरात की आयत नंबर 14 वइन तुतीउल्लाह व रसूलहू ला यलितकुम मिन आमालिकुम शैया इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अगर तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो तुम्हारे आमाल के अजर व सवाब में कोई कमी नहीं करेगा। इताअत करने वालों के लिए अल्लाह ताला यकीनन बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो लिहाजा सुन्नतों का इत्तबा या अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को सामने रखते हुए अमल करना इस बात की दलील बन जाता है कि अल्लाह ताला फिर हमें पूरी नेकी देगा, मतलब 100 में से 100 नंबर देगा। वरना आपको 100 में से 50 मिले, 40 मिले, 60 मिले तो मज़े की बात तो नहीं है ना। हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसको पूरे नंबर मिले, तो कोई नेकी करते वक्त इस मेयार को सामने रखिए कि मुझे पूरे नंबर लेने हैं। और वो तरीका क्या है कि आप कोई भी काम करें तो वो अल्लाह के नबी की सुन्नतों के मुताबिक हो। अगला मसला है गुनाहों की मगफरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा के साथ मशरूत है, यानी शर्त है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जाए। इसकी दलील है सूरत आले इमरान की आयत 31 कुल इन कुन तुम तो हिब्बुन अल्लाह फत्तबेउनी यहबिबकुमुल्लाह व ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے. اللہ تو ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دے. اگلا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اللہ تو ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے. اس بات کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ نساء 69، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان لوگوں کی رفاقت کتنی اچھی ہے. اور یہی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھے راستے پہ کون لوگ ہوں گے؟ جو یہ کام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اگلا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود بعض لوگ عملاً اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتے. کبھی دیکھے ایسے لوگ؟ بس اپنے آپ کو ہی دیکھا کریں، دوسروں کو تو دیکھنے کی ضرورت نہیں. کیا حکم ایسے لوگوں کے لیے؟ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. یعنی عمل سے جب گواہی نہیں دی جاتی تو پھر دعویٰ بھی زائل ہو جاتا ہے. دلیل کیا ہے؟ سورت نور کی آیت 47 سے 48، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ. لوگ کہتے ہیں، ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کی ہے. پھر اقرار کرنے کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں، کیونکہ جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے باہمی معاملات کا فیصلہ کرے، ان میں سے ایک فریق قطرا جاتا ہے، یعنی اطاعت نہیں کرتا. اس وقت امت مسلمہ کا یہی معاملہ ہے. باتوں کی حد تک، محبت کی بات تک تو اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی سنتوں کو اور آپ کے طریقوں کو پیش کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ اس سے اوائڈ کرنے لگتے ہیں. اس کی ایک اور دلیل ہے، سورۃ نساء کی آیت 61، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے رک جاتے ہیں. سورۃ آل عمران آیت 32، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. اے نبی، کہہ دیجیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس آیت کی ایک بڑی اہم بات ہے. کیا؟ کافرین کا لفظ استعمال ہوا. یہاں کس کفر کی بات ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنے کی. ہمارے یہاں عموماً ایک تصور ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والا شخص کافر ہے. بڑی رعونت سے کہتے ہیں یہ کافر لوگ ہیں، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں تو بس ہمیں تو کوئی کچھ نہ کہے. حالانکہ اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننے سے بھی انسان کفر پہ چلا جاتا ہے. کفر کے مختلف درجے ہوتے ہیں، انہی میں سے یہ ایک درجہ ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ باہمی انتشار اور لڑائی جھگڑے ہیں. دلیل، سورۃ انفال آیت 46-46، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج ہوا اکھڑی بھی مسلمانوں کی. دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا روب گیا ہوا ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہماری سنتوں سے دوری. اللہ اور رسول کی نافرمانی صریح گمراہی ہے. دلیل، سورۃ احزاب آیت 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दें, फिर उसे अपने मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार हासिल रहे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, वो सरीह, सरीह का मतलब है खुली, खुली गुमराही में पड़ गया। और ऐसे लोग अमूमन अपने आप को गुमराह नहीं, बल्कि अमल करने वालों को गुमराह कहते हैं, कि ये लोग न जाने किधर चल पड़े, हर बात में सुन्नत की बात करते हैं। तो खुलासा कलाम क्या है कि जब अल्लाह के नबी की सुन्नतों पे अमल नहीं किया जाएगा, तो हमारे पास हक के बाद गुमराही ही रह जाएगी। अगला मसला है, अल्लाह ताला और रसूल अकरम की नाफरमानी करने वाले अपने इंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। दलील है सूरत माईदा आयत 92, व अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल वाहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। लोगो, अल्लाह और रसूल की इताअत करो और नाफरमानी से बाज आ जाओ, लेकिन अगर तुमने हुक्म ना माना तो जान लो कि हमारे रसूल पर साफ साफ पहुंचा देने के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं। दूसरी दलील सूरत तगाबुन आयत 12-12, व अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, अल्लाह रसूल की बात मानो और अगर ना मानोगे तो याद रखो कि हमारे रसूल पर साफ साफ हक बात पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। तीसरी दलील सूरत नूर आयत 54, कुल अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, आप कह दीजिए कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और अगर नहीं करते तो खूब समझ लो कि रसूल पर जिस फ़र्ज़ यानी रिसालत का बोझ डाला गया है, वो सिर्फ इसी का जिम्मेदार है, और तुम पर जिस फ़र्ज़ यानी इताअत का बोझ डाला गया है, इसके जिम्मेदार तुम हो। अगर रसूल की इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे, वरना रसूल की जिम्मेदारी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि साफ साफ हुक्म पहुँचा दे। यानी मनवाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, मानते हो तो मान लो, नहीं मानते तो उस रसूल ने तो अपना पैगाम दे के अपने हिस्से का काम कर दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा रब जाने। अगला मसला है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की सज़ा जहन्नम और रुस्वा कुन अज़ाब है। दलील सूरत फतह आयत 17-17, वमन युति अल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, इसे अल्लाह इन जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और जो शख्स अल्लाह और रसूल की इताअत से मुंह फेरेगा, वो इसे दर्दनाक अजाब देगा। इससे क्या पता चलता है कि जहन्नुम में जाने वाले सिर्फ काफिर ही नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह के नबी की नाफरमानी करने वाले लोग भी होंगे। अगला दावा क्या है कि हीले और बहाने तलाश करके अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से पहलू तही करना दर्दनाक अजाब का बायस है। दलील क्या है? सूरत नूर आयत 63, ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम। मुसलमानों, रसूल के बुलाने को अपने दरमियान एक दूसरे को बुलाने की तरह न समझ बैठो। अल्लाह इन लोगों को खूब जानता है जो तुम में से एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से खिसक जाते हैं। रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को डरना चाहिए कि वो किसी फितने में गिरफ्तार ना हो जाएं या इन पर दर्दनाक अजाब ना आ जाए। तो सारी आयात का खुलासा क्या था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोल मॉडल बना के भेजे गए, आपकी बात को भी मानना है, आपके किए हुए कामों को भी अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है, और अल्लाह के नबी की सही हदीस को सामने पाते हुए किसी इंसान के कौल, फतवे या किसी के इज्तिहाद या किसी के ऐसे मामले को सामने नहीं रखना। और यही वो चीज़ है कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को इतना मजबूत बना दिया था कि हल्की सी भी खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करते थे। तारीख को जब आप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलती हैं, जिसमें से एक वाक्य मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगी कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी शख्स ने ख़बर दी, कूफा था या बसरा था, कोई शहर था, आएगी शायद वो इस किताब में भी हदीस, कि कुछ लोगों को हमने देखा कि नमाज पढ़ने के बाद सारे लोग एक हलका बना के यानी एक सर्कल या सेमी सर्कल बना के बैठ जाते हैं और सारे मिल के जिक्र करते हैं, यानी जैसे अल्लाह हू है तो एक बोलता है तो कोरस में दूसरे भी पढ़ते हैं। हैरत इसलिए हुई कि अल्लाह के नबी के दौर में किसी ने इसको नहीं देखा, हज़रत अली थे ग़ालिबन या इब्ने अब्बास थे, ये दोनों लफ्ज़ बस अभी बाद में इंशाल्लाह कोट करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा कल अगर ऐसा करेंगे ना फिर मुझे बताना, ताकि मौका दिया कि देखेंगे मुग़ालता तो नहीं। अगले दिन फिर यही हुआ, नमाज के बाद लोग बैठे और मिल के इज्तमाई अंदाज में कोरस की शक्ल में ज़िक्र शुरू कर दिया। फिर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ गए और आपने उन लोगों को मिंबर पे जाके डांटा, कहा कि आज जो तो तुमने हरकत की है ना, कल मैं तुम्हें ये हरकत ना करता देखूं। और उसके बाद बड़ा दिल सोज किस्म का खुतबा दिया कि अभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए ज़्यादा अरसा ही नहीं हुआ, अभी तो आपकी अज़वाज मुतहरात भी जिंदा है, अभी तो आपके छोड़े हुए बर्तन भी नहीं टूटे, और क्या तुमने दीन में नई बातें शुरू कर दी। तो बात यह है कि सुन्नत की रोशनी में दीन को रखेंगे तो दीन आसान रहेगा, ऑथेंटिक रहेगा और काबिले अमल रहेगा। जिसने सुन्नत की बाढ़ से निकाल के ये कहा ना, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हर्ज है, क्या हर्ज है। एक मौके पे एक सहाबी ने अपने बेटे को ये जुमला कहने पे कि क्या हर्ज है कोड़े लगवाए, कि मैं तेरे सामने अल्लाह के नबी की हदीस बयान कर रहा हूँ और तू आगे से कह रहा है क्या हर्ज है। एक सहाबी ने अपने बच्चे से तर्क कलाम किया कि जा आज के बाद मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, कि मैं तुझे अल्लाह के नबी की हदीस सुनाता हूँ और तू कहता है हर्ज क्या है। तो लिहाजा हमारा दीन जो आज इतनी महफूज शक्ल में हम तक पहुंचा, उसकी वजह यह है कि सहाबा कराम अल्लाह के नबी की बातों के ऊपर जम जाते थे। और आज जो हमने देखी कि इतनी ज़्यादा आयतें हैं कुरान पाक में, और इससे बहुत ज़्यादा और भी हैं जो ज़ाहिर है कि सारी तो बयान नहीं की जा सकती, तो कुरान पाक खुद इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के नबी की बात को मानो। अल्लाह ताला हमें मानने वालों में से बनाए, और दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला तू हमारी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी की सुन्नतों और अहादीस को एक आला मुकाम देने वाला बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।